नमस्कार भारत, तारीख 1 जुलाई दिन शुक्रवार, आपके साथ मैं अशोक कुमार। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद आर के चौधरी ने भी बसपा छोड़ी, एक के बाद एक झटकों से कैसे निपटेगी पार्टी?
जब भी वोट करता है उनका वर्ग तो मायावती के नाम पे करता है। स्वामी प्रसाद मौर्य और आर के चौधरी तो आप कह सकते हैं कि जैसे शतरंज पे ज्यादा होते हैं उस तरह के।
तेलंगाना में 5,000 वकील आज बैठेंगे धरने पर। 6 साल पहले लापता सोनू बांग्लादेश से भारत लौटा, माँ ने बेटे को ईद का चांद कहा।
बड़ो ईद आज के तो खुशी नाईर चाँद सोनू।
जमाल इब्ने मूसा बने बांग्ला बजरंगी भाईजान, हाल विंबलडन का भी। लेकिन सबसे पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। बहुजन समाज पार्टी के महासचिव आर के चौधरी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। 2 हफ्ते के दौरान बीएसपी छोड़ने वाले वो दूसरे बड़े नेता हैं। इसके पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ दी थी। चौधरी ने भी मौर्य की तरह बीएसपी प्रमुख मायावती पर आरोप लगाए हैं। बीएसपी के संस्थापक सदस्यों में रहे चौधरी की 2001 में पार्टी से उन्हें बाहर कर दिया गया था। साल 2013 में उनकी दोबारा वापसी हुई थी। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थितियों का जायजा लेने के लिए आज केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह कश्मीर घाटी का दौरा करेंगे। बीती 25 जून को श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए चरमपंथी हमले में सीआरपीएफ के 8 जवान मारे गए थे। अपने दौरे के दौरान गृह मंत्री सेना, पुलिस और दूसरे सुरक्षा बलों के प्रमुख अधिकारियों से सुरक्षा प्रबंधों की जानकारी लेंगे। कल से अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो रही है। माना जा रहा है कि गृह मंत्री इस यात्रा को लेकर किए गए इंतजामों की भी जानकारी लेंगे। अमरीकी सेना ने ट्रांसजेंडरों पर पाबंदी हटा दी है। अब ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग देश की सशस्त्र सेनाओं में खुलेआम काम कर सकेंगे। अमरीका के रक्षा मंत्री एश्टन कार्टर ने कहा है कि सेना को हर उपलब्ध क्षमतावान व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए। नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। अनुमान है कि अमरीकी सेना में करीब 4,000 ट्रांसजेंडर काम करते हैं। रक्षा मंत्री कार्टर ने कहा,
The Defense Department and the military need to avail ourselves of all talent possible.
रक्षा मंत्रालय और सेना को सभी उपलब्ध प्रतिभाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमारी सेना, जो कि दुनिया की सबसे उम्दा लड़ाकू सुरक्षा बल है, आगे भी अपनी पहचान को बनाए रखे। हमारा उद्देश्य इस देश की रक्षा करना है। हम योग्यता के अलावा कोई और ऐसा अवरोध नहीं चाहते हैं जो हमें ऐसे सैनिक, नौसैनिक, एयरमैन और मरीन की नियुक्ति से रोके जो हमारे उद्देश्य को उम्दा तरीके से पूरा कर सकते हों। ये थे एश्टन कार्टर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। यूरोपीय संघ की ट्रेड कमिश्नर सिसिलिया मेलस्ट्रोम ने कहा है कि ब्रिटेन ईयू से अलग होने के बाद ही नए समझौते पर बातचीत शुरू कर सकता है। उन्होंने बीबीसी से कहा कि बातचीत की 2 प्रक्रियाएं हैं। पहली यूरोपीय संघ से बाहर होने को लेकर है, उसके बाद नई साझेदारी को लेकर है। उन्होंने कहा कि जब तक ब्रिटेन और ईयू के बीच नया समझौता नहीं होता, तब तक विश्व व्यापार संगठन के नियमों के मुताबिक व्यापार होगा। भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की गई है। कटौती के बाद दिल्ली में पेट्रोल 89 पैसे और डीजल 49 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया है। बीबीसी समाचार।
श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बीबीसी की हिंदी सेवा से कार्यक्रम नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव, और आपके साथ मैं अशोक कुमार। तो बात करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की, जहां चुनाव तो अगले साल होने हैं लेकिन सियासत अभी से गर्माने लगी है। आयाराम गयाराम का दौर भी शुरू हो गया है, खासकर बहुजन समाज पार्टी में। चंद दिनों के भीतर एक दूसरे बड़े नेता ने पार्टी को अलविदा कहा है। आर के चौधरी बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं। अब तक वो पार्टी में महासचिव थे, लेकिन कल उन्होंने पार्टी अध्यक्ष मायावती पर गंभीर आरोप लगाते हुए खुद को पार्टी से अलग कर लिया। एक के बाद एक नेताओं के जाने से पार्टी पर क्या कुछ असर होगा, सुनिए लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र की ये रिपोर्ट।
आर के चौधरी ने साल 2013 में करीब 12 साल का वनवास खत्म करके बसपा में वापसी की थी, लेकिन अब की बार भी वो महज 3 साल तक ही टिक सके। 2001 में बसपा ने उन्हें अति महत्वाकांक्षी होने का आरोप लगाते हुए पार्टी से बाहर किया था और अब आरके चौधरी खुद पार्टी नेता मायावती पर तमाम आरोप लगाते हुए अलग हुए हैं।
जब क्वार्टर के मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष पहली बार क्वार्टर सामने अनाउंस किया गया तो ऐसी मनमनी चर्चा होने लगी जो चर्चा मेरे आने पहले आप लोग कर रहे थे इससे ज्यादा चली। तो जानता है कोई कि पैसा दिलाना कठिन काम है, इससे पार्टी डूब जाएगी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि आगे बात करें। बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग आएंगे, 11 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
ये विडंबना ही है कि चुनाव में टिकट बेचने और पैसे को महत्व देने जैसे आरोप बसपा से निकलने वाले लगभग सभी नेता लगाते हैं। करीब 2 हफ्ते पहले ही पार्टी को बड़ा झटका देने वाले और मायावती के बेहद वफादार कहे जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी यही आरोप लगाए थे। इससे पहले अखिलेश दास भी यही आरोप लगाकर पार्टी से बाहर गए थे। हाल ही में कुछ नेताओं को पार्टी ने खुद भी बाहर का रास्ता दिखाया है, खासकर उन्हें जिन्होंने राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग की थी। लेकिन आरके चौधरी का जाना इन सब से थोड़ा अलग है। चौधरी बसपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और पार्टी के संस्थापक कांशीराम के निकट सहयोगी रहे हैं। पार्टी में वो भले ही 12 साल बाद आए हों लेकिन उनके आने से पार्टी को मजबूती मिली थी, ऐसा जानकारों का कहना है। लेकिन आरके चौधरी और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं के पार्टी छोड़ने से बसपा पर क्या असर पड़ेगा, इसे लेकर विशेषज्ञों की राय भी कुछ अलग है। लखनऊ में टाइम्स ऑफ इंडिया के वरिष्ठ पत्रकार सुभाष मिश्र कहते हैं,
बहुजन समाज पार्टी का इसके पहले का भी इतिहास अगर आप देखें तो कई लोग अध्यक्ष, प्रदेश के अध्यक्ष, कई बड़े बड़े विधायक, मंत्री छोड़ करके गए हैं, लेकिन पार्टी के ऊपर बहुत असर इसलिए नहीं पड़ा कि बहुजन समाज पार्टी शुद्ध रूप से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करती, जात की राजनीति करती है और उससे जो वर्ग जुड़ा हुआ है उसको सिर्फ पहले कांशीराम दिखाई देते थे और अब वो मायावती के नाम पर जब भी वोट करता है उनका वर्ग तो मायावती के नाम पर करता है। स्वामी प्रसाद मौर्य और आरके चौधरी तो आप कह सकते हैं कि जैसे इस शतरंज पे यादें होते हैं उस तरह के हैं, इंडिपेंडेंटली ये लोग बड़े नेता नहीं है।
हालांकि कुछ एक वरिष्ठ पत्रकार इससे अलग राय भी रखते हैं, लेकिन ज्यादातर ये मानते हैं कि बसपा का चाहे जितना बड़ा नेता रहा हो, पार्टी से बाहर जाकर वो अपना बड़प्पन नहीं दिखा पाया। दूसरी ओर बड़े नेताओं के जाने से पार्टी के जनाधार पर कोई बहुत असर नहीं पड़ा। अब देखना ये होगा कि चुनाव से ठीक पहले ओबीसी और दलित समुदाय के 2 बड़े नेताओं के बाहर जाने का पार्टी पर क्या असर होता है, क्योंकि फिलहाल तो कई नेता अभी बाहर निकलने की फिराक में हैं। समीर आत्मज मिश्र, BBC, लखनऊ।
और दूसरी तरफ दक्षिणी राज्य तेलंगाना में अलग हाईकोर्ट बनाने की मांग को लेकर आंदोलन लगातार तेज हो रहा है और इसी के तहत आज भारत के इस सबसे नए नवेले राज्य के लगभग 5,000 वकील धरने पर बैठने जा रहे हैं। हाल ही में इसी मांग के साथ करीब निचली अदालतों के 100 जजों ने जुलूस भी निकाला था, जिसके बाद 11 जजों को निलंबित कर दिया गया। आज के धरने पर पूरे ब्यौरे के साथ इमरान कुरैशी।
आंध्र प्रदेश से अलग होने के बाद तेलंगाना के लिए हो रही अलग हाईकोर्ट की मांग का मामला अब और गर्म होता जा रहा है। पिछले कई दिनों से निचली अदालतों का काम ठप पड़ा है। रविवार को करीब 100 जजों ने जुलूस निकाला, जिसके बाद 200 जज सामूहिक छुट्टी पर चले गए हैं। ये लोग नाराज हैं कि मई के महीने में तेलंगाना की निचली अदालत के लिए हाईकोर्ट ने 130 जजों को नियुक्त किया जो आंध्र प्रदेश के मूल निवासी हैं। इसके विरोध में ही जजों ने प्रदर्शन किए और आज करीब 5,000 वकील इंदिरा पार्क में धरना करेंगे। तेलंगाना एडवोकेट्स जॉइंट एक्शन कमेटी के संयोजक टी श्रीरंग राव कहते हैं,
जो इंजस्टिस करे ना हाईकोर्ट, हाईकोर्ट के अगेंस्ट में हम महाधरना कर रहे सर। पूरा दिन पूरा परमिशन भी लिए हम, पूरा तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट से 5,000 एडवोकेट अटेंड हो रहे हैं और हम पूरा तेलंगाना में जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, मजलिस पार्टी, बीजेपी पार्टी और TDP पार्टी, TRS पार्टी, पूरा लोगों को इन्वाइट करे, CPI CPM को भी इन्वाइट करे, वो लोग आके हमारा महाधरना में वो लोग भाषण देने का है। तो पार्टी का जो हमारा डिमांड है ना हाईकोर्ट का डिमांड के ऊपर और जो प्रोविजनल लिस्ट प्रिपेयर करा हाईकोर्ट बेसिंग ऑप्शंस बेस करके वो रिकॉल करने का हमारा डिमांड है और जो जजेस को और एम्प्लॉयज सस्पेंड करे वो भी रिवोकेशन करने का हमारा डिमांड है।
यहाँ ध्यान देने की बात है कि आज होने वाले इस धरना में निचली अदालतों के जज हिस्सा नहीं ले रहे हैं। इतवार को हुए प्रदर्शन के बाद 11 जजों को निलंबित कर दिया गया है और कल 4 अदालती कर्मचारियों को भी निलंबित कर दिया गया। अब इस मसले पर तेलंगाना सरकार केंद्र सरकार पर दबाव डाल रही है और केंद्र सरकार कह रही है कि हाईकोर्ट इस मामले में एक याचिका सुन रही है तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। साथ ही केंद्र सरकार का कहना है कि आंध्र प्रदेश सरकार को फैसला लेना है कि वो अपनी हाईकोर्ट राजधानी में बनाना चाहती है या कहीं और। अब इस मामले पर केंद्र सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार को वक्त चाहिए। उस बीच भारत का नया राज्य तेलंगाना अपनी हाईकोर्ट के लिए बेचैन हो रहा है। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
पहले पाकिस्तान के शहर कराची से मूक बधिर गीता की वापसी, फिर जर्मनी में एक शरणार्थी शिविर में फंसी गुरप्रीत की वतन वापसी, और अब इस फहरिस्त में एक नया नाम जुड़ गया है, सोनू का। सोनू जो 6 साल पहले दिल्ली से लापता हो गया था, अब वो बांग्लादेश से दिल्ली पहुंचा है अपने माता पिता के पास। ये बच्चा कैसे बांग्लादेश पहुंचा और वहां से वापस किस तरह आया, सुनिए इस बच्चे की कहानी बीबीसी संवाददाता शुभ ज्योति घोष की जुबानी।
माता पिता ये जानकर खुश तो है कि इनका लाल वापस तो लौट आया है, लेकिन अब उनकी भाषा यानी हिंदी नहीं समझता है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सोनू और उनके परिवार को मंत्रालय बुलाया और गले लगाकर सोनू को स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने ट्वीट किया, वेलकम होम सोनू। 6 साल बाद बेटे से मिलने के बाद माँ मुमताज बेगम भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेश की जमाल इब्ने मूसा नहीं होते तो शायद उनकी जिंदगी में ये दिन कभी नहीं आता।
सबसे बड़ो ईद आज के तो खुशी नाइर चाँद सोनू।
आज हमारी जिंदगी की ये सबसे बड़ी ईद है। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी कोई और नहीं हो सकती। सोनू ही मेरे लिए ईद का चांद है। बांग्लादेश के जमाल भाई अगर हमारी मदद नहीं करते तो हम सोनू को कभी वापस नहीं पा सकते थे। हमारे लिए खुदा और भगवान वही हैं।
जमाल इब्ने मूसा बांग्लादेश की जशोर इलाका में रहते हैं। जमाल ने अपने पड़ोस में देखा कि उनके घर पर एक बच्चे से बाल मजदूरी करवाई जा रही है। अब ये इस मामले की गहनता में गए तो उन्हें शक हुआ कि ये बच्चा बांग्लादेश का नहीं है। फिर जमाल ने इस बच्चे से बात की और पाया कि उसका नाम सोनू है, वो भारत का है और वो दिल्ली की सीमापुरी इलाका का रहने वाला है। जमाल के पास बहुत थोड़ी जानकारी थी, लेकिन उसने जैसे ठान लिया था कि वो इस बच्चे का उसके घर पहुंचा कर रहेगा। जमाल भारत आए और उन्होंने एक निजी समाचार चैनल से संपर्क में आए और दिल्ली में रहते हुए इस थोड़ी सी जानकारी की मदद से सोनू के माता पिता की खोजबीन शुरू की और वो इसमें कामयाब रहे। ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सोनू किस तरह से बांग्लादेश पहुंचे, लेकिन सोनू की मां का आरोप है कि रहीमा बेगम नाम की बांग्लादेशी महिला ने उनके बेटे की अगवा किया था। मुमताज बेगम कहती है,
माने एक्चुअली ये बांग्लादेशी महिला से আমাদের এখানে থাকতো, हां আমি ওকে আশ্রয় দিয়েছিলাম।
मैंने बांग्लादेश की इस महिला को शरण दी। उसकी स्थिति बहुत खराब थी, उसकी एक छोटी बच्ची थी और मुझसे उसकी ये हालत देखी नहीं गई। मैंने उसे अपने घर में रखकर खाना पीना दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि उसका मेरे पति के साथ कुछ है। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने उसकी पिटाई की और उसे घर से बाहर निकाल दिया। इस घटना के 7 दिन बाद उन्होंने मेरे बेटे को अगवा कर लिया।
इसके बाद मुमताज ने अपने बेटे की खोजबीन की, पुलिस में गुमशुदी की रिपोर्ट भी लिखाई, लेकिन साल दर साल बीतते रहे, लेकिन उन्हें सोनू की कोई खबर नहीं मिली। लेकिन फिर 6 साल बाद जमाल इब्ने मूसा उनके बेटे के बारे में सूचना लेकर आए। फिर दोनों देशों ने एक दूसरे के उच्चायुक्त को संपर्क किया। सोनू और उसके माता पिता का DNA टेस्ट हुआ, दोनों मैच कर गए। अब सोनू अपने माता पिता के साथ है। वही रहीमा बेगम के खिलाफ बांग्लादेश की कोर्ट में अपहरण के मामले में सुनवाई चल रही है। कोर्ट में रहीमा बेगम ने दावा किया है कि उन्होंने सोनू का अगवा नहीं किया था, बल्कि खुद सोनू के पिता ने उसे दिया था। इस बीच बांग्लादेश में जमाल इब्ने मूसा को लोग शबासी दे रहे हैं और इसे बांग्लादेश का बजरंगी भाईजान कहकर पुकार रहे हैं।
शुभ ज्योति घोष बता रहे थे बांग्लादेश के बजरंगी भाईजान कहलाए जाने वाले जमाल इब्ने मूसा ने कैसे सोनू की मदद की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उपजाऊ धरती और वहां के कर्मठ किसान इलाके की पहचान रहे हैं, लेकिन हाल के समय में सांप्रदायिक तनाव की खबरों ने इस इलाके को नई पहचान दी है। 3 साल पहले मुजफ्फरनगर दंगों से ये इलाका अभी पूरी तरह उबरा भी नहीं है कि अब कैराना से हिंदुओं के कथित पलायन पर हो रही सियासत इस इलाके में तनाव पैदा कर रही है। लेकिन इसी इलाके में एक गांव ऐसा भी है जहां न मुजफ्फरनगर दंगों का असर हुआ था और न अब कथित पलायन की खबरों से हिंदू मुसलमान एकता पर कोई फर्क पड़ रहा है। इसी गांव में पहुंचे बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद।
शोरम नाम है इस गांव का, जो मुजफ्फरनगर शहर से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। 16,000 की आबादी वाला ये गांव जाट और मुस्लिम इलाकों में बटा है। पहले मैं मुस्लिम मोहल्ले में जाता हूँ।
तो यहाँ की जो आबादी है वो 50-50 है, 50%
मतलब और लोग जो हिंदू हैं जैसे झीमर कुमार अच्छा। और जाति बहुत है।
अच्छा,
सभी जाति हैं।
तो मुस्लिम अल्पसंख्यक
मुस्लिम जो है ना एक तिहाई मांग चलो यहाँ पे एक तिहाई।
2013 में जब दंगे हुए थे तो यहाँ पे इसका क्या असर हुआ था?
दंगा तो हुआ था, उसमें इतना बड़ा असर तो है नहीं। यहाँ तो मतलब शांत सा ही रहा।
हमारे गांव में तो कुछ नहीं है, बाहर वैसे कुटवा।
आप नाम बता दीजिए।
अली हसन नाम है मेरा।
अली हसन
जी।
और आपके नाम?
अब्दुल रहमान।
अब्दुल रहमान। तो 2013 में झगड़े हुए, छोड़ के गए थे यहाँ पे?
नहीं नहीं, कोई नहीं कहा छोड़ गए, कहाँ जाएंगे छोड़ कर।
अपने मकानों पर गया कोई नहीं।
अब ये बेटा चौधरी, ये हमारे गाँव का जाट है।
अच्छा, आप जाट हो?
हाँ जाट।
आप हिंदू हो?
हाँ।
अरे हम तो आपको मुसलमान समझ रहे थे।
मुसलमान भी हो सके, उठा बैठी और कुछ नहीं है।
आप भी मुस्लिम इलाके में बैठे हुए डर नहीं लगता?
नहीं बिल्कुल नहीं।
पर आप इधर आते हो बराबर?
बराबर, बैठे उठे भी निकल हो रहा है।
आपका नाम क्या है?
रतन सिंह कह रहे हैं।
रतन सिंह।
हाँ जी।
ये माहौल इस तरह का जैसा अभी बना हुआ है, पहले भी ऐसी माहौल था 2013 से पहले?
जो करीजा बैठे उठे धोरे बत्ती बोलते पहले।
तो फिर 2013 में मुजफ्फरनगर के गांव में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए क्यों?
स्थिति कमजोर है शांति की, जरा सी बात पे माहौल खराब हो
जाता है। हाँ, पूरा विश्वास नहीं है अभी।
पूरा विश्वास नहीं,
नहीं है।
साथ में आप लोग उठते बैठते हो रहते हो लेकिन फिर भी
विश्वास नहीं है।
इसके बाद मैं जाटों के मोहल्ले में गया। एक घर के बाहर दोपहर की कड़ी धूप के बावजूद चार पाइयां लगी हुई थी जिसमें कुछ लोग बैठे हुए थे। यहां बैठे किसानों में से एक बुजुर्ग किसान फेरू सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को 2013 के दंगों का जिम्मेदार ठहराया।
भाजपा जो है ना, ये झगड़ा कारण फिर बिचारी पिछले में कराया झगड़ा, ये झगड़ा हो नहीं था। अगर भाजपा वाले इसी में सक्रिय न होते 2013 में झगड़ा नहीं होता।
तो ऐसा तो नहीं कि आपकी जो युवा पीढ़ी है वो बहक में आ रही है?
वो बहुत बहक में आ जा, पक्की बात है। नेताओं के जल्दी बैग में आ जाएंगे।
आप लोगों की नहीं चलती?
नहीं, हमारी नहीं चलती, कम चले हमारी मानने कौन।
वहाँ मौजूद दूसरे किसानों ने भी इसी तरह की बातें कही। ये सभी किसान भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हैं। उनका कहना था कि उनकी संस्था सांप्रदायिक तत्वों के खिलाफ पूरे जोश से लड़ रही है। शोरम की तरह मुजफ्फरनगर के कई गाँवों में सांप्रदायिक सद्भावना महसूस की जा सकती है। काफी हद तक इसका श्रेय रतन सिंह और फेरू सिंह जैसे वरिष्ठ किसानों और भारतीय किसान यूनियन को जाता है। BKU के राकेश टिकैत कहते हैं कि दंगों के बाद उनकी संस्था ने कई सभाएं कराई जहां किसान की पहचान और एकता पर जोर दिया गया।
अब दंगे नहीं होने के यहाँ पे, आने वाले 50 साल दंगा नहीं होने का जी। यहाँ
नहीं होने देंगे या नहीं होंगे?
नहीं होने तो देंगे ही नहीं जी, होगा भी नहीं।
अच्छा,
आप इनको खुला छोड़ दो अगर कोई लड़ ले कि जिन लोगों से दंगे हो गया जिसका नाम आ गया, वो दोनों ही पक्षों की कह रहा है जी मैं बात
जी।
वो तो क्या उनकी पिटी उनके गांव भी झगड़े नहीं करने के, उनकी मदद किसी ने नहीं करी। और आज भी दोनों पक्ष ये चाहते हैं कि इनको सजा हो, इनको उम्र कैद हो, इनको फांसी हो।
BKU ने अब तक हिंदू और मुस्लिम किसानों के सैकड़ों झगड़ों को रफा दफा कराया है। टिकैत कहते हैं कि BKU दोनों समुदायों को जोड़ने में काफी हद तक कामयाब रही है। उनका कहना था कि अगले साल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सांप्रदायिकता को चुनावी मुद्दा नहीं बनने देंगे। जुबैर अहमद, BBC मुजफ्फरनगर।
जुबैर अहमद आपको बता रहे थे कि सियासत किस तरह लोगों को बांट देती है। कुछ ऐसा ही इन दिनों अमेरिका में भी हो रहा है जहां इस साल होने हैं राष्ट्रपति चुनाव, और यही हाल कुछ कुछ ब्रिटेन का भी है जहां एक जनमत संग्रह ने लोगों को दो धड़ों में बांट दिया है। लेकिन इस सियासत से फायदा किसको है, सुनिए वॉशिंगटन से BBC संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय की डायरी।
अमरीकी देशभक्ति बड़े जोर शोर से ट्रेंड कर रही है, ट्विटर, फेसबुक और गूगल पर नहीं बल्कि पूरी फिजा देशभक्ति के तीन रंगों यानी लाल, नीला और सफेद की आगोश में है। 4 जुलाई है, कोई मजाक थोड़ी है। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अपनी आजादी मना रहा है और इस बार तो चुनावी साल है, यानी सोने पर सुहागा। ये अमेरिका को फिर से महान बनाने का साल है, अमरीकी सरहदों को पुख्ता करने का साल है। देशभक्ति को जताने का साल है, बाहर से आए लोगों को भगाने का साल है और उनके नाम पर अमरीकियों को डराने का साल है। दुकानों में तो देशभक्ति जैसे बरस रही है। चीन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बनी चीज़ें अमरीकी रंगों में लिपटकर धड़ाधड़ बिक रही हैं। चप्पल हो या चश्मा, सब पर देशभक्ति की छाप है। स्विमिंग पूल और समंदर के किनारे अपने गोरे जिस्मों को धूप में जलाकर भूरा करने की कवायद में लगी जवानियों को ढकने की नाकाम कोशिश कर रही नन्ही सी बिकिनी भी अमरीकी देशभक्ति में रंगी हुई है। अंदाज़ा है कि 4 जुलाई को 50 करोड़ बियर की बोतलें सुड़की जाएंगी, 15 करोड़ हॉट डॉग भकोसे जाएंगे, पिछले वर्षों के मुकाबले कहीं ज़्यादा झंडे खरीदे जाएंगे। बियर बनाने वाली कंपनी बडवाइजर ने तो अपना नाम बदल डाला है और उनकी बोतलों पर अब सिर्फ अमरीका लिखा जाएगा। देशभक्ति और डॉलर भक्ति दोनों ही फल फूल रहे हैं, लेकिन अटलांटिक के उस पार यही देशभक्ति कहर बरपा रही है। जिस तेजी से देशभक्ति ऊपर जा रही है वहां, उसी तेजी से ब्रिटिश पाउंड जमीन पर लौट रहा है। ये गड़बड़ कैसे हो गई? अब आज़ादी तो गुलाम रहे देश मनाते हैं, जिसने बरसों तक सिर्फ राज किया है उसे आज़ादी मनाने की जरूरत क्या थी? जिसने हम अनपढ़ गंवारों को अंग्रेजी बोलना सिखाया, डिवाइड एंड रूल की तालीम दी, एक काम को रोकने के 100 तरीकों वाली बाबूगिरी या ब्यूरोक्रेसी दी, उस मुल्क से ऐसी गलती कैसे हो गई? चुनाव में किए गए वादों को सीरियसली थोड़ी न लेते हैं, ये बात डेविड कैमरन साहब कैसे भूल गए? चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि यूरोप से आज़ादी के लिए रेफरेंडम करवाएंगे, लेकिन पूरा करने की क्या जरूरत आन पड़ी थी? बल्कि अब आज़ादी का नारा लगाने वाले देशभक्तों के पास भी कुछ करने को नहीं रह गया है तो आने जाने वालों पर मलबा फेंक रहे हैं। अपनी पुरानी कॉलोनियों को ही देख लेते, चुनाव के दौरान कोई अखंड भारत की बात करता है तो कोई पाकिस्तान को सभी आतंकवादियों से मुक्त करने की बात करता है, लेकिन सचमुच ऐसा कोई करता है क्या? दुकान भी तो चलानी होती है। गर्मियों का महीना था, भारत पाकिस्तान के सियासतदान इन दिनों बड़े ज़रूरी काम से लंदन में होते हैं, कोई दिल के इलाज के लिए, कोई पुरानी बीवी के भाई के चुनाव में कैंपेनिंग के लिए, तो कोई टेम्स नदी की सफाई के बारे में जानने के लिए वहाँ होता है। कैमरन साहब इन मजे हुए लोगों में से किसी से तो मिल लेते, निहारी भी मिलती और सलाह भी। अब भुगतो, सुना है सभी पीठ पीछे हंस रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि ब्रिटेन ने तो ट्रंप का मजाक उड़ाने का हक भी खो दिया। कैमरन साहब को ये तो नहीं लगा कि अमेरिका में भी जो फिर से महान बनने की मुहिम चल रही है वो सचमुच में होने जा रहा है और लोग उन पर उंगलियां उठाएंगे कि उन्हें मौका नहीं दिया गया? अरे सर, कहाँ हो आप? देशभक्ति तो क्रिकेट और फुटबॉल के मैदानों पर या चुनावी वादों में ही भुनाने वाली चीज़ रह गई है। अमरीका में भी वो जब तक डॉलर बरसाती है तभी अच्छी लगती है। आपके देशभक्त भी नारे लगाते फिर अपने काम में लग जाते, किसके चक्कर में फंस गए आप? खैर, जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ वहाँ नोटिस लगा हुआ है कि इस बार 4 जुलाई की शाम बियर और खाना मुफ्त होगा, लेकिन साथ में देशभक्ति का एक गीत भी गाना होगा। जाकर पूछता हूँ कि सारे जहाँ से अच्छा गाऊँ तो चलेगा क्या? ब्रजेश उपाध्याय, BBC, वॉशिंगटन।
ब्रजेश उपाध्याय की डायरी आपने सुनी और उनका अंदाज भी सुना, कैसा लगा जरूर बताइएगा अपनी चिट्ठियों के माध्यम से। और अब बारी अखबारों की। वात्सल्य मौजूद हैं अखबारों के साथ, आप पढ़ चुके हैं, क्या कुछ सुर्खियां हैं वात्सल्य जी आज के अखबारों में?
जी अशोक जी, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ स्विस बैंक की, जो कि 80 के दशक से ही भारतीयों के जहन में अक्सर स्विस बैंक का नाम बसा रहता है।
काला धन अक्सर नाम सुनाई देता है स्विस बैंकों का।
स्विस बैंक के खाते खाली होते जा रहे हैं। न भारत टाइम्स ने इस खबर को लीड स्पेस में जगह दी है और अखबार ने बताया कि स्विस बैंक में भारतीयों की रकम 2/3 तक घट गई है, जो 1997 से सबसे कम है, साल 1997 के बाद से।
तो अब काला धन बाहर नहीं जा रहा है या कहीं और जा रहा है?
किसी और जा रहा है, हो सकता है। अखबार ने इसका ज़्यादा जिक्र नहीं किया, लेकिन ये बताया कि 1997 से ही विदेशियों की रकम का वो जानकारी स्विस बैंक दे रहे थे और 1997 के बाद से अब सबसे कम रकम रह गई है, 2/3 रकम घट गई है। इसी के साथ मैं रिज़र्व बैंक, क्योंकि बैंक की बात हो रही है, रिज़र्व बैंक के जो हमारे गवर्नर हैं रघुराम राजन, भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर,
उन्होंने कहा बयानों में उनका नाम आजकल सुनने को आ रहा है,
उन्होंने अपना कार्यकाल कहा है कि दूसरा नहीं लेंगे, लेकिन साथ में ये कहा है कि जो गवर्नर का टेन्योर है, कार्यकाल है 3 साल, वो बहुत छोटा है। उन्होंने संसद की स्थायी समिति को कहा कि अमेरिका में गवर्नर का कार्यकाल 4 साल का होता है और कई देशों में 5 साल का होता है। हिंदुस्तान टाइम्स ने इसे पहली खबर के तौर पर जगह दी है। वहीं इंडियन एक्सप्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के हवाले से बताया है कि राजन जब उनके मुख्य आर्थिक सलाहकार थे तब उन्होंने कहा था कि वो गवर्नर बनना चाहते हैं और मनमोहन सिंह ने आगे अपना ये वादा पूरा किया।
मेरे ख्याल से अखबार ने एक बड़ा सा इंटरव्यू किया मनमोहन सिंह के साथ।
जी, 25 साल पूरे होने के मौके पर आर्थिक सुधारों के, जिनकी शुरुआत वित्त मंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने की थी और
नरसिम्हा राव की सरकार थी।
जी, मनमोहन सिंह के बयान को ही उन्होंने अपनी हेडलाइन बताया है और मनमोहन सिंह को अफसोस है, अखबार कहता है कि संकट के वक्त हम कार्रवाई करते हैं और जब ये संकट खत्म हो जाता है तो हम यथास्थिति अपना लेते हैं, मतलब स्टेटस को में हम आ जाते हैं, अखबार ये कहता है। हिंदुस्तान अखबार की पहली खबर कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड जांचा। खबरें आ रही हैं कि वो मंत्रिमंडल का विस्तार करने वाले हैं और इसी तरीके से जनसत्ता ने इस खबर को लेकर एक कार्टून बड़ा दिलचस्प बनाया जिसे आप देख सकते हैं। एक तरफ लिखा हुआ है मंत्रिमंडल विस्तार के लिए मोदी का टेस्ट पेपर और दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि ऐसा लगता है यहाँ किसी को भी कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, दो बुजुर्ग मंत्रियों बाबूलाल गौर और सरताज सिंह को कल बाहर कर दिया गया।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खबरों को लेकर आए हमारे सामने जो अखबारों में छपी। और इसके बाद अब बारी खेल समाचारों की और बारी विंबलडन की।
विंबलडन 2016 अपडेट।
विंबलडन पर लंदन से बीबीसी हिंदी सेवा की विशेष प्रस्तुति में स्वागत है आपका, मैं हूं अपूर्व कृष्ण। लंदन में कल मौसम बेहतर रहा, बादल छाए रहे मगर बारिश नहीं हुई जिससे पूरे दिन बिना बाधा के विंबलडन में खेल होता रहा। कल के खेल की सबसे बड़ी खबर बनी महिलाओं के वर्ग में, जहां दुनिया की दूसरे नंबर के खिलाड़ी गार्बिन मुगुरुज़ा को दुनिया की 124वें नंबर के खिलाड़ी याना चेपेलोवा ने मात दी। स्पेन की मुगुरुज़ा पिछले साल की विंबलडन उपविजेता थी, जहां फाइनल में उन्हें सरीना विलियम्स ने हराया था और इस साल उन्होंने फ्रेंच ओपन के फाइनल में सरीना विलियम्स को हराकर अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम हासिल किया था। इस बार विंबलडन में उनसे काफी आशाएं थी मगर कल स्लोवाकिया की याना चेपोलोवा ने उन्हें बड़े आराम से सीधे सेटों में 6-3 6-2 से हरा डाला। मैच के बाद चेपोलोवा ने कहा,
Last year I beat Halep on this court and I had great memories and I'm so happy, so happy.
पिछले साल मैंने इसी कोर्ट पर हालेप को हराया था और मैं बहुत खुश हूँ। मैं अच्छा खेली और मुझे लगता है मैं जीत की हकदार थी, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, याना चेपोलोवा के शब्द। मगर पिछले साल पहले ही राउंड में बाहर होने वाली रोमानिया की सिमोना हालेप इस बार तीसरे दौर में पहुंच गई हैं। कल 5 बार की विंबलडन चैंपियन वीनस विलियम्स भी तीसरे दौर में पहुंच गईं। 8वीं सीट की खिलाड़ी वीनस का मुकाबला 115वें नंबर की खिलाड़ी ग्रीस की मारिया साकरी से था। 3 सेटों में हुआ मैच लगभग 2.5 घंटे चला और वीनस ने मैच 7-5 4-6 6-3 से जीतकर अगले दौर में जगह बनाई। वीनस कल डबल्स में भी खेली जहां उनकी जोड़ीदार थीं उनकी छोटी बहन और दुनिया की पहले नंबर की खिलाड़ी सरीना विलियम्स। विलियम्स बहनों का मुकाबला स्लोवाकिया की जोड़ी से था और उन्होंने मैच 7-5 6-3 से जीतकर दूसरे दौर में जगह बना ली। पुरुषों के वर्ग में दुनिया में दूसरे नंबर के खिलाड़ी ब्रिटेन के एंडी मरे ने बड़े आराम से अपना दूसरा दौर का मैच जीत लिया। उनका मुकाबला ताइवान के येन सुन लू से था जो दुनिया में 76वें नंबर के खिलाड़ी हैं और शुरुआत उन्होंने धमाकेदार की जब उन्होंने मरे की सर्विस ब्रेक कर दी। मगर मरे ने इसके बाद आक्रामक खेल दिखाया और अगले 20 में से 17 गेम जीते। मरे ने 1 घंटे 40 मिनट तक चला मैच 6-3 6-2 6-1 से जीतकर तीसरे दौर में जगह बनाई। कल 5वीं सीड के जापान के खिलाड़ी के निशिकोरी ने भी फ्रांस की जूलियन बेनतू को हराकर तीसरे दौर में जगह बनाई। मगर पुरुषों के वर्ग में 23वीं सीड के खिलाड़ी इवो कार्लोविच को एक क्वालिफायर खिलाड़ी स्लोवाकिया के लुकास लात्सको ने दूसरे ही दौर में बाहर का रास्ता दिखा दिया। कल एक अन्य मैच में ब्रिटेन के खिलाड़ी डैन इवांस ने भी अपना मैच जीतकर तीसरे दौर में जगह बनाई और अब आज उनका मुकाबला दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी और 7 बार के विंबलडन विजेता रोजर फेडरर से होगा। विंबलडन के 5वें दिन आज रोजर फेडरर के अलावा दुनिया के पहले नंबर के खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच भी कोर्ट पर दिखेंगे। कल किसी भारतीय खिलाड़ी का मैच नहीं हुआ, लिएंडर पेस, रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा अभी भी अपने अपने डबल्स मुकाबलों का इंतजार कर रहे हैं। अपूर्व कृष्ण, बीबीसी विंबलडन।
और कार्यक्रम के समापन से पहले बारी मुख्य समाचारों की।
बीबीसी समाचार। बहुजन समाज पार्टी के महासचिव आर के चौधरी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थितियों का जायजा लेने के लिए आज केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह कश्मीर घाटी का दौरा करेंगे। अमेरिका सेना ने ट्रांसजेंडरों पर लगी पाबंदी हटा दी है, अब ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग देश की सेनाओं में खुलेआम काम कर सकेंगे। यूरोपीय संघ की ट्रेड कमिश्नर सिसिलिया मेलस्ट्रोम ने कहा है कि ब्रिटेन ईयू से अलग होने के बाद नए समझौते पर बातचीत शुरू कर सकता है। बीबीसी समाचार।
तो नमस्कार, भारत में अभी के लिए बस इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे दीपक जसरोटिया। आपसे ठीक एक घंटे बाद मुलाकात होगी। कार्यक्रम होगा विश्व भारती। तो रहिएगा हमारे साथ। अभी के लिए विदा। नमस्कार।